रात की 9 बज रहे थे। जंगल से आने के बाद आकांक्षा थककर अपने कमरे में सोई हुई थी, जबकि बाहर राजवीर जी और जानवी ने मिलकर रात का खाना तैयार कर लिया था। जानवी, तू ऐसा कर, जाकर अक्षु को बुला ला, खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए राजवीर जी ने कहा। लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ ख्याल आया और उन्होंने जानवी को रोकते हुए कहा, चल ऐसा कर, रहने दे, वो बहुत थक गई होगी, लगता है अब तक तो वो सो भी गई होगी। मैं जाकर चेक कर लेती हूँ दादू, अगर वो जाग रही होगी तो मैं उसे बाहर बुला कर ले आऊँगी, वरना कोई बात नहीं, जंगल की बातें तो वो मुझे कल भी बता सकती है, कहकर जानवी आकांक्षा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ये दोनों लड़कियाँ भी ना, जब तक सारी बातें एक दूसरे को नहीं बता देती, इन्हें चैन नहीं आता। राजवीर जी मुस्कुराते हुए खुद से बातें कर रहे थे, वे वहाँ पर बैठकर उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जानवी अंदर कमरे में गई तो उसने देखा कि आकांक्षा सच में सो रही थी। इसे तो देखो, मेरी नींदें उड़ाकर यहाँ पर खर्राटे लेकर सो रही है। किसी महान इंसान ने कहा है कि सोते हुए बंदे को नींद से जगाने पर पाप लगता है, लेकिन जब इतने पाप कर ही लिए हैं तो एक छोटा मोटा पाप और सही। मुस्कुराते हुए जानवी ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और जाकर आकांक्षा के मुंह पर उड़ेल दिया। बारिश, अरे कोई बचाओ, बारिश हो रही है, जानवी छाता तो लाकर दे। पानी गिरने से आकांक्षा चौंक कर उठी। उसे इस तरह हड़बड़ाता देखकर जानवी हंसते हुए उसके पास आकर बैठी और बोली, बारिश नहीं बेटा, तूफान आने वाला है। एक तो तुम मुझे सारी बातें बताए बिना यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो, ऊपर से तेरे दादू बाहर मुझसे काम करवा रहे हैं, खुद तो मज़े से यहाँ से चली गई थी, तेरे पीछे मुझे दादू का गुस्सा झेलना पड़ा। मेरे दादू गुस्सा नहीं करते हैं, हाँ बस तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि दादू क्या, किसी को भी गुस्सा आ जाए। आकांक्षा ने अपना मुंह साफ करते हुए पास में रखा चश्मा लगाया। अगर मैं बाहर जाकर दादू को ये बोल दूंगी कि तूने मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे जगाया है, तो तेरी शामत आ जानी है। मैं इतनी थकी हुई थी यार, कुछ तो रहम करती। तू भी मुझ पर रहम कर और जल्दी से सब कुछ बता कि जंगल में क्या हुआ था। यार, क्यूरियोसिटी के मारे मेरे पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी है। आई डोंट नो एनीथिंग। हम डिनर के बाद में कमरे में आएंगे और तुम मुझे सब कुछ डिटेल में बताएगी। अच्छा ठीक है, मैं भी जब तक तुझे सारी बातें नहीं बता देती, मुझे भी कहाँ सुकून मिलता है। चल अब ये ड्रामा छोड़ और बाहर जाकर खाना खाते हैं, दादू वेट कर रहे होंगे, कहकर आकांक्षा बेड से खड़ी हो गई। जानवी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। उन दोनों को साथ देखकर राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार जानवी तूने जगा ही लिया। अक्षु, तू खाना बाद में खा लेना, पहले इसे सारी बातें बता दो, नहीं तो ये तुम्हें रात को भी नहीं सोने देगी। दादू, क्यों ना आज रात आप भी हमारे साथ अक्षु की जंगल यात्रा के किस्से सुनने आ जाइए, हमें भी तो पता चले कि इसने वहां पर कितना एंजॉय किया। जानवी की बात सुनकर राजवीर जी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं बच्चों, ये सब बातें तुम दोनों ही करो, मैं तो आज सुकून से सोऊंगा, क्योंकि इतने दिनों बाद मेरी अक्षु मेरे पास है। चलो आओ अब साथ में खाना खाते हैं। राजवीर जी, आकांक्षा और जानवी तीनों साथ मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए आकांक्षा को उस समय की याद आने लगी जब भूख लगने पर रेवांश उसके लिए फल तोड़कर लाया था। लास्ट टाइम जब भूख लगी थी तो रेवांश मेरे लिए जंगल से फ्रूट्स लेकर आया था, वो इस वक्त जंगल में क्या कर रहा होगा? अभी तो उससे अलग हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, क्या उसे भी मेरी याद आ रही होगी? रेवांश के बारे में सोचकर आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर जी खाना खाने में व्यस्त थे, लेकिन जानवी की नज़र आकांक्षा के चेहरे पर गई तो उसने उसकी कोहनी मारकर धीरे से पूछा, लगता है जंगल में जरूर तुम्हें कोई ऐसा मिल गया होगा जिसके बारे में सोचकर मैडम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी मैं सोचूं कि थकान के बावजूद भी तो इतनी फ्रेश कैसे लग रही है, कौन है वो? अभी नहीं, रात को बताऊंगी, आकांक्षा ने अपनी मुस्कुराहट को काबू में करके जवाब दिया। वे लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक बाहर जानवरों के रोने का भयानक शोर होने लगा। उनके रोने की आवाज इतनी तीव्र थी कि वो किसी के भी कानों को चीर सकती थी। जानवरों का रोना अशुभ होता है, अब पता नहीं कि ये किस संकट का संकेत दे रहे हैं, राजवीर जी ने परेशान होकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है दादू, ये भी तो हो सकता है कि बाहर जानवरों में लड़ाई हो रही होगी, या फिर ये शोर उनके रोने की आवाज ना होकर एक दूसरे को बुलाने की कोई सांकेतिक आवाज हो। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ कीजिए, आकांक्षा ने उन्हें परेशान देखकर कहा। चलो ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो, पिछले दिनों में इतना कुछ हो गया कि अब तो इन छोटे छोटे संकेतों से भी डर लगने लगा है। तुम लोगों का खाना हो जाए तो अंदर जाकर सो जाना, रात को लेट मत करना। मेरा खाना हो गया है, मैं बाहर थोड़ी देर बगीचे में टहलकर अंदर आ जाऊंगा, कहकर राजवीर जी ने अपने खाने की प्लेट रखी और बाहर टहलने चले गए। बाहर जानवरों के रोने का शोर बढ़ता ही जा रहा था। आकांक्षा के समझाने के बाद राजवीर जी ने उसे मात्र उनके मन का वहम समझकर भुला दिया। रेवांश के कदम इतने सालों में पहली बार जंगल से बाहर पड़े थे और इसके बाहर आते ही कुदरत ने इस बात का संकेत देना शुरू कर दिया था। चांद आसमान में सिर पर था, बाहर आते ही उसकी नजर चांद पर पड़ी। आज एक अरसे बाद आपको देखा है। आकांक्षा, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे रोज मिलने आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया है कि आपने हमें बचाकर सही नहीं किया। आज से पहले इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं की। ये आपको खो देने का डर है या फिर किसी अनिष्ट की आशंका? जो भी हो, हम सच का पता लगा कर रहेंगे। सोचते हुए रिवांश तेजी से आगे बढ़ने लगा। चलते हुए वो काफी आगे निकल आया था। जब सामने उसे बहुत सारे पहाड़ और गुफाएं दिखाई देने लगीं, तब वो एक जगह पर रुककर आंखें बंद करके उन गुफाओं के द्वार के आगे आकर कुछ महसूस करने लगा। हर द्वार के आगे खड़े होकर वो मन ही मन कुछ बुदबुदाता और फिर दूसरी दूसरी गुफा के आगे जाकर खड़ा हो जाता। ये प्रक्रिया वो काफी बार दोहरा चुका था, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही हाथ लगी। ये भी नहीं है, रिवांश गुस्से में चिल्लाया, हम पहली मायावी शक्ति होंगे जिन्हें पाताल के द्वार का रास्ता तक नहीं पता। इतने सालों में एक बार भी हमने पाताल लोक में कदम तक नहीं रखा, शायद इसी वजह से हम वहां नहीं जा पा रहे। लेकिन सच का पता लगाने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, तब तक हमारे मन की बेचैनी दूर नहीं होगी। सभी गुफाओं के आगे वो प्रक्रिया दोहराने के बाद निराश होकर रिवांश वापस शिमला के जंगलों की तरफ लौट आया। भले ही वो पाताल के अंदर नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन उसके कदमों की आहट से ही पाताल में बैठे बुराई के देव को उसका आभास हो गया था। तो बुराई ने तुम्हें अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है, आज नहीं तो कल तुम अपनी सही जगह पर पहुंच ही जाओगे पिशाचराज। बस विशिष्ट मुहूर्त का इंतजार करो, तुम्हारे लिए भी पाताल द्वार खुल जाएगा और जिस दिन तुम्हारे कदम यहाँ पड़े, तुम यहीं के होकर रह जाओगे। सिंहासन पर बैठा शैतान रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। वहां पर बैठे हुए भी उसकी नजरें उन गुफाओं पर थीं जहां रिवांश थोड़ी देर पहले गया था। उन गुफाओं में से एक गुफा के द्वार के आगे उसके कदमों के नीले निशान बने हुए थे। वहां बने हुए निशान इस बात के गवाह थे कि वही पाताल का दरवाजा था, लेकिन वो रिवांश के लिए क्यों नहीं खुला, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ था जिसका पता सिंहासन पर बैठे शैतान के अलावा किसी को नहीं था। थोड़ी देर टहलने के बाद राजवीर जी अपने कमरे में वापस आकर सोने चले गए थे। आकांक्षा और जानवी भी खाना खाने के बाद कमरे में आ गई थी। अंदर आते ही आकांक्षा ने दरवाजा बंद कर लिया।
अब मुझे बताएगी कि किसके बारे में सोचकर तेरे चेहरे पर इतनी लंबी मुस्कुराहट थी? मेरे बारे में सोचकर तो तू कभी इतनी खुश नहीं हुई, जानवी ने बेड पर पसरते हुए कहा। आकांक्षा भी उसके पास आकर लेट गई और आंखें बंद करके रिवांश के चेहरे को महसूस करने लगी। तुझे पता है मैं जंगल में किससे मिली थी? तू तो इस तरह से खुश हो रही है जैसे वहां जंगल में तुझे टॉम क्रूज मिल गया हो, जानवी ने उसकी बात काटकर कहा। टॉम क्रूज ना सही, लेकिन वो भी किसी राजकुमार से कम राजकुमार ही तो था। वो राजकुमार रिवांश, उसकी आंखें। आकांक्षा अपनी बात को पूरा करती इससे पहले जानवी चौंक कर बैठ गई और हैरानी से चिल्लाई, क्या कहा तूने? राजकुमार रिवांश, ये वही है ना जिसके बारे में हमने बुक में पढ़ा था? बिलासपुर का वो राजकुमार जो विदेश से पढ़कर आया था और लौटते वक्त अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ शैतानी प्रक्रियाएं की थीं? वो अब तक जिंदा है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हैरानी से जानवी की आंखें बड़ी हो गई थीं। तू पहले मेरी पूरी बात सुनेगी, अब चुप करके बैठ और मेरी सारी बातें ध्यान से सुन। मुझे नहीं पता कि उस रात मैं जंगल कैसे पहुंच गई थी। वहां पर जाते ही मैं सबसे पहले रिवांश से ही मिली थी। उस किताब में लिखी बातें तो सच थीं, लेकिन अधूरा सच। उस रात जो शैतानी प्रक्रियाएं की गई थीं, वे रिवांश के द्वारा नहीं बल्कि उसके चार धोखेबाज दोस्तों के द्वारा की गई थीं जिनके बारे में किताब में लिखा हुआ था। तो क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? रिवांश अब तक जिंदा है, इसका मतलब वो भी एक वैम्पायर? जानवी ने हैरानी से पूछा। अनफॉर्चुनेटली रिवांश भी एक पिशाच है, लेकिन इसमें सच में उसकी कोई गलती नहीं है जानवी। उसके साथ उस रात धोखा हुआ था जिसकी वजह से वो बेचारा ये शापित जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गया। और तूने जंगल में क्या किया? आई मीन टू से, राजपुरोहित जी ने कहा था कि तेरा जन्म और ये शक्तियाँ किसी लक्ष्य के लिए हैं। तेरे पास वो दिव्य शस्त्र पहुंचा था, तब तुमने उससे सारे पिशाचों को मार दिया? आकांक्षा ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, मैंने जंगल के सभी बुरे पिशाचों को मार दिया, लेकिन रिवांश को नहीं। जानवी, वो बुरा नहीं है, और उसके साथ रहते हुए मुझे उससे प्यार। आकांक्षा की बात खत्म होने से पहले जानवी फिर से बीच में बोल पड़ी। तुम्हें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था अक्षु, वो इंसान नहीं है। हमने बुक में पढ़ा था ना कि किसी भी पिशाच को जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे प्राणी के खून की आवश्यकता पड़ती है। उसका जीवित रहना धरती पर एक नई तबाही लाएगा। तू बेवजह की फिक्र कर रही है। रिवांश ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी प्राणी का खून नहीं पिएगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद का पेट कैसे भरेगा? तू पागल हो गई है। एक वैम्पायर और एक इंसान की लव स्टोरी सिर्फ किसी कहानियों या फेरी टेल्स में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। जानवी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई। आकांक्षा ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। एक तू ही तो है जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, अब ये सब बोलकर मेरा दिल तो मत तोड़। आकांक्षा के चेहरे पर उदासी के भाव थे। जानवी ने उसका मूड ठीक करने के लिए बोला, आई विश कि आगे भी सब अच्छा ही हो। अक्षु, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। रिवांश, वो कैसा है हम नहीं जानते हैं, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। मेरी शक्तियाँ जानती हैं, वे महसूस कर सकती हैं कि रिवांश अच्छा है। अच्छा, तेरा वो राजकुमार रिवांश दिखने में कैसा है? जानवी ने आकांक्षा को परेशान करते हुए कहा। बस इतनी सी बात, उसे तो मैं अभी तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वैसे तो वो बहुत हैंडसम है और उसकी हेजल ग्रीन आँखें, ओ माय गॉड, किसी को भी दीवाना बना दे। तुझे पता है वो कैसे बात करता है? आकांक्षा ने रिवांश की तरह बोलने की कोशिश करते हुए कहा। शहजादी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप देखिएगा, हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। आकांक्षा के रिवांश की नकल करने पर जानवी और आकांक्षा दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। जानवी को रिवांश का चेहरा दिखाने के लिए आकांक्षा ने कुछ ही समय में एक पेपर पर उसका चेहरा बना दिया। अरे वाह, ये तो सच में बहुत हैंडसम है, जानवी ने रिवांश की ड्राइंग देखते हुए कहा। हाँ, ये तो बहुत हैंडसम है, लेकिन अब हमें सो जाना चाहिए, रात के 2 बज रहे हैं। दादू ने इस वक्त हमें बातें करते देख लिया तो तेरी क्लास लग जानी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत हो गया, कल से हम अपनी स्टडी को भी ज्वाइन करेंगे। तेरे चक्कर में मैंने भी अपनी क्लासेस मिस कर दी, चल गुड नाइट। लाइट्स बंद करके आकांक्षा और जानवी सोने चली गईं। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद वहाँ एक अजीब सी हरी रोशनी फैली हुई थी, जो कि रिवांश की तस्वीर से उसकी हरी आंखों से निकल रही थी, जो आकांक्षा ने बनाई थी। क्रमशः